الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة الشعير لا يبالهم الله بالة نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ نیک لوگ صالحین اور اچھے لوگ درجہ بدرجہ جاتے رہیں گے, ایک کے بعد ایک نیک انسان رخصت ہوتے جائیں گے. وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ, اور ناکارہ بیکار اور خراب قسم کے لوگ رہ جائیں گے جیسے کحفالت الشعیر, جیسے جو کا بھوسا ہوتا ہے, جیسے جو کا بھوسا کوئی کام نہیں آتا, گویا اسی طریقے پر ناکارے اور بیکار قسم کے انسان رہ جائیں گے. اور پھر فرمایا لا یبالہم اللہ بالۃ, اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے, کہاں جائیں, کیا ہو, کہاں ہلاک ہو, کہاں مرے, کہاں کٹے, اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اس حدیث شریف میں گویا دو باتیں بتائی گئی. ایک بات تو یہ ہے کہ صالحین رفتہ رفتہ اٹھتے جائیں گے, چنانچہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ دنیا صالحین سے کم ہوتی جا رہی ہے, اٹھتے جا رہی ہے. اور پھر جو بھوسا ہے اور بیکار قسم کا انسان ہے وہ زمین پر رہے گا, یہ دوسری خبر ہے. پیشین گوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے. ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم صالحین میں شامل ہوں, ہم نیک لوگوں میں شامل ہوں, ہم کوشش کریں کہ صلاح اور فلاح, نیکی اور اچھائی اور بھلائی بڑھتی جائے. یہ کوشش ہر انسان کے اپنے بس میں ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ صلاح اور فلاح کا راستہ بند ہو گیا, ختم ہو گیا. نیکی کا راستہ ایسا ہے جیسے شارع عام ہوتا ہے, موٹر وے ہوتا ہے, بڑا راستہ کھلا ہوا ہے, راستہ سیدھا راستہ ہے, چلنے والے اس پر چلتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو موٹر وے ہوتا ہے تو ایک گاڑی نہیں چلتی, کتنی گاڑیاں چلتی, بہت سی گاڑیاں. ایک راستہ نہیں ہے, تین تین راستے ہیں. اور کینیڈا امریکہ میں جاؤ گے تو چھ چھ راستے مل جائیں گے آپ کو, چھ راستے جانے کے, چھ راستے آنے کے, بارہ راستے ہیں. بنو اسرائیل کو بھی بارہ راستے ملے تھے, یہ بھی انہیں کی قوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بارہ راستے دے دیے کہ بھائی ٹھیک ہے, چھ جاؤ چھ آؤ, اتنا بڑا راستہ تاکہ ٹریفک نہ جمے, چلنے والے چلتے ہی رہیں. مگر میں آپ کو پھر بھی مشاہدہ سناتا ہوں کہ ٹریفک پھر بھی ہوتی ہے, اتنے چلنے والے چلتے ہیں کہ آپ ان چھ راستوں پر چلنے کے باوجود بھی رش اور ٹریفک اور ہجوم محسوس کریں گے. کئی مرتبہ وقت پر کہیں پہنچنا ہوتا ہے تو پہنچنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے. خیر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نیکی کے راستے بنائے ہیں, ایک راستہ نہیں ہے, سینکڑوں راستے ہیں. ایک بزرگ عارف ملا فرماتے ہیں کہ طرق الوصول الی اللہ, اللہ تک پہنچنے کے راستے, بقدر انفاس الخلق, مخلوق کے سانس کے بقدر ہیں. ایک ایک انسان جتنا سانس لیتا ہے, جتنی مرتبہ سانس لیتا ہے, اتنے ہی راستے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اللہ نے بنا رکھے. لیکن آج ہماری کمی ہے, ہماری کمزوری ہے. دنیا کے اعتبار سے ہم ترقی کر رہے ہیں, ہم تلاش کر رہے ہیں کس راستے سے ہمیں دنیا ملے. ایک راستہ بند ہوا, دوسرا راستہ تلاش کر لیتے ہیں. ایک دکان بند ہوئی, دوسری دکان ہم کھول لیتے ہیں. ایک فیکٹری میں ملازمت بند ہوئی تو ہم نے دوسری تلاش کر لی, ہمیں کام مل جاتا ہے. دنیا کام کر رہی ہے, دنیا کام ڈھونڈ رہی ہے, کام ملتے ہیں. کہتے ہیں بھائی یہاں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, لیکن لوگ پھر بھی کام کر رہے ہیں, ہزاروں ہزار انسان کام کر رہے ہیں. اور جب کوئی انسان تلاش کرتا ہے کام کو, کام اس کو مل ہی جاتا ہے. ایسا نہیں کام نہیں ملتا. جس طریقے پر دنیا کی ترقی ہو رہی ہے اور دنیا کے راستے لوگ تلاش کر رہے ہیں اور صاحب مال, صاحب حیثیت بننا چاہتے ہیں, اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا راستہ بھی کھول رکھا ہے. حدیث میں جہاں خبر دی گئی کہ جا رہے ہیں, وہیں پر یہ بھی ہے, اس کا خلاصہ ہے کہ ہر آدمی کو فکر اور کوشش کرنی چاہیے. اور جیسے صالحین نے محنتیں کی ہیں, کوششیں کی ہیں, فکریں کی ہیں, اسی طریقے پر ہمیں بھی فکر اور کوشش کرنی ہے. جتنی فکر کریں گے اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نیکی کا جذبہ, نیکی کا مزاج پیدا کریں گے. کسی کے بارے میں اگر ہمیں یہ خیال ہے کہ ماشاءاللہ ان کو اللہ نے اتنی قبولیت دی ہے, کہ اس قبولیت کے پیچھے ان کا مجاہدہ ہوتا ہے, ان کی محنتیں ہوتی ہیں. حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملفوظ نقل کرتے ہیں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا, فرماتے ہیں کہ جو بزرگوں کی انتہا کو دیکھتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے, اور جو بزرگوں کی ابتدا کو دیکھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یہ دیکھ رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ تو بڑے بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, ان کے پاس لوگ آتے ہیں, مساوہ کرتے ہیں, ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ہدیہ پیش کرتے ہیں, ان کے کھانے پینے کا پورا انتظام ہو جاتا ہے. تو اس میں وہ بہک جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں, کہنے کا اچھا بزرگی اسی کا نام ہے. لیکن جو بزرگوں کی ابتدا دیکھتا ہے, انہوں نے ابتدا میں کیسے مجاہدے کی, کیسی محنتیں کی, تو پھر وہ کامیاب ہوتا ہے. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ خود طالب علمی کے زمانے میں وہ مجاہدہ کیا ہے کہ کوئی بستر پاس میں نہیں تھا, کوئی بستر نہیں. دہلی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے, ایک مسجد میں قیام کی جگہ مل گئی تھی. نمازیوں نے یا جو متولی صاحب ہوتے کہہ دیا اچھا تم یہاں سو جایا کرو, کوئی بستر پاس میں نہیں. چٹائی ہوتی ہے, چٹائی جانتے ہیں نا, وہاں معمولی قسم کی چٹائی, سردی کے رات ہوتی ہے, ایک کنارے پر لیٹے اس کو اپنے اوپر لپیٹ لیا اور لپیٹے لپیٹے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے. ساری رات اس طرح گزار دیتے تھے, جتنا بھی سونا ہوتا. کہتے پھر بھی سر کی طرف سے اور پیر کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی. اور فرماتے ہیں کہ پھر وہ دور تو مجاہدے کا گزر گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ کرم فرمایا, انتظام فرمایا کہ ہر سال ایک نیا لحاف اللہ کسی بندے کو توفیق دیتے ہیں, وہ پہنچا دیتا ہے. مجاہدے پر انعام. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو بھی مجاہدہ کرتا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے راستے بے پناہ ہیں, مگر مجاہدے ضروری ہے. محنت, مجاہدہ کریں, اللہ کو تلاش کریں, اللہ کو حاصل کریں, اللہ کو پائیں. اللہ کی معرفت کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے, کچھ محنت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. ہم لوگ تو بہت سیدھے سادھے مسلمان بنے ہوئے ہیں, پانچ وقت کی نماز پڑھ لی, سوتے ہیں, بہت بڑا مجاہدہ ہو گیا. वो भी किस तरह बोलते हैं अल्लाह ही जानते हैं। जरूरत है इस बात की कि अल्लाह के रास्ते को हासिल करने के लिए हम कुछ कुर्बानियों का एहतमाम करें, कुर्बानी दें। हदीस शरीफ में आता है, माज़ाल अब्दी यतकर्रब इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबबतु। हदीस कुदसी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा मुझसे कुर्ब अगर हासिल करना चाहता है, नवाफिल के जरिए कुर्ब हासिल कर सकता है। इतना आसान कर दिया, जितनी भी नवाफिल का बंदा एहतमाम करेगा, अल्लाह ताला का कुर्ब उसी के बकदर नसीब होगा। फरमाते हत्ता अहबबतु, यहां तक कि मैं उस बंदे से मोहब्बत करने लगता हूं। तो नवाफिल जरिए मोहब्बत है, इससे मोहब्बत पैदा होती है अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। ये बंदा मेरे लिए मेरी इबादत कर रहा है, मैंने उस पर फर्ज नहीं किया, मैंने उस पर लाजिम नहीं किया। फर्ज तो चार रकात ही अदा कर ली उसने, लेकिन वो उससे पहले भी कुछ पढ़ रहा है, उसके बाद भी कुछ पढ़ रहा है, यकीनन इसको मुझसे ताल्लुक है। हर नमाज से पहले, हर नमाज के बाद सुन्नतों का एक सिलसिला होता है, आज हम उसमें बहुत ही गफलत करते हैं। और पढ़ी तो पढ़ी, वरना कोई बात नहीं, कोई ख्याल भी नहीं आता। हम दुनिया में इतने मशगूल हो चुके हैं, इतने गाफिल कि आम तौर पर हमें नमाज की एक या दो या उससे ज्यादा रकात जाना गोया फर्ज हो जाता है। हम तो यहां देख रहे हैं बेचारे जो पहली सब में नमाज पढ़ते हैं, पहली दूसरी में, अगर उनको किसी जरूरत से अचानक जाना हो पीछे की जानी, वो कभी भी नहीं जा सकते, नामुमकिन है कि जाएं। कोई वक्त नमाज का ऐसा खाली नहीं जहां मसबूक की दो चार सफे न खड़ी हो, आदमी निकल ही नहीं सकता। ये बेचारे आए थे पहले, गुनाह इन्होंने ये किया कि भाई क्यों पहले आ गए, पीछे रहे तो जा सकते। मैं समझ में नहीं आता ये क्या मामला है। अल्लाह भाई, ये तो खैर अभी छोटी जगह, लेकिन बड़ी होगी तब भी ये हाल होगा। अल्लाह हमारी गफलत को माफ करे, बहुत गफलत है। हर मस्जिद का ये मामला, एक डेढ़ सफ तो होती है पहली रकात में, और फिर उसके बाद सारे मसबूकीन की पहली। भाई घड़ियां आपके पास है, टाइम टेबल आपके पास है, आपको मालूम है हमें घर से मस्जिद जाना है कितनी मिनट लगती है, कितना वक्त लगता है। एक मरतबा गफलत हो, दो बार गफलत हो, आदत बना रखी है, क्या ताल्लुक है हमारा अल्लाह ताला का, कुछ भी नहीं। जब देखो हमेशा सफों की सफें लगी रहती हैं और लोग जो है बात गोया आदत बनी है, फर्ज समझ रखा है कि हमको देर ही से जाना है मस्जिद में, नमाज शुरू हो तब आएंगे हम मस्जिद में और बैतुल खला जाएंगे, पहले वो काम करेंगे फिर नमाज शरीफ। अरे तुम भी तो सोचो आखिर कि हमें जरूरत से फारिग होना, पहले से हम आए। तो गफलत की ये बात है, अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि अगर मेरा कुर्ब हासिल करना हो नवाफिल के जरिए से, सालिहीन कैसे पैदा होंगे, अवाबी नवा और तहज्जुद इशराक और चाश का एहतमाम जब इंसान करता है, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। जिनको लग जाता है चस्का, वो एक नफिल भी छोड़ना नहीं चाहते, चे जाए के फर्ज छोड़े। देखा है हमने माशाल्लाह, ये कहते हैं कि आलिम ही हो, आलिम हो गैर आमिल हो, आलिम हो गैर आलिम हो, अल्लाह ताला जिसको मोहब्बत अता फरमाते हैं, दीन से ताल्लुक अता फरमाते हैं, वो फिर नमाजों का वो एहतमाम करता है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। और सबसे बड़ा कुर्ब का जरिया बंदे के लिए नमाज ही है। मजमून यही है कि मेराज अगर आपको हासिल करनी है, अल्लाह का कुर्ब नमाज के जरिए से हासिल होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको ऐसी नमाज दे गए जिसकी वजह से हम जितना भी अल्लाह का कुर्ब हासिल करें कर सकते हैं। तो हदीस तो सुनाई मैंने कि नेक लोग जाते रहेंगे, लेकिन ये मतलब नहीं कि हम फिर ज्वार और जौ का भूसा बनकर दुनिया में रहें। हमें जरूरत है इस बात की, हम मेहनत करें, हम फिक्र करें, उन सालिहीन की जानशीनी अदा करें, उनका हक अदा करें। वो अगर नेक थे तो हम भी नेक बने, हमें अल्लाह तौफीक अता फरमाए। गुज़श्ते जुमा को हाफिज पटेल साहब का इंतकाल हुआ, सालिहीन के गिरोह में थे, जुमरे में थे, कैसे कैसे मुजाहदे करते थे। आखिरी चंद साल मुमकिन है माजूरी के रहे हों, वरना देखा उनको हमेशा नवाफिल अवाबीन इशराक चाश हर नमाज का एहतमाम करते। फिर अल्लाह ने उनको कबूलियत भी वो दी, मर्तबा भी वो अता फरमाया। देख रहे हैं कितना जनाजे में लोग और इंसानों का हुजूम था। अल्लाह का कुर्ब जब बंदा हासिल करता है दिलों में अल्लाह ताला मोहब्बतें पैदा करते हैं। कोई ताल्लुक नहीं होता इससे। मैं देख रहा था बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि शायद जिंदगी में इक्का दुक्का उन्होंने मुलाकात की होगी हाफिज साहब से या जमात से ताल्लुक होगा, लेकिन जनाजे में शरीक हैं वो। क्यों शरीक हुई आखिर? कहाँ कहाँ से आए, दूर दूर से लोग आने वाले, हर शहर के इंसान उमड़े हुए उमड़ पड़े। बुनियाद यही है कि अल्लाह ताला मोहब्बतें दिल में डाल देते हैं। अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चों को भी सलाह और फलाह के रास्ते पर लगाए। जितना हम लगाएंगे, जितनी हम कोशिश और फिक्र करेंगे, इंशाल्लाह उसी के बकदर देखे दुनिया में नेक लोग बढ़ते जाएंगे। कयामत यकीनन आएगी, लेकिन हम कयामत के आने का जरिया ना बने। आया करेगी जब उसका वक्त होगा। ये थोड़ी कि हमको कयामत लानी है खींच कर। अरे अच्छा है जितनी दूर जाए और जितनी बाद में आए, हमको तो ये फिक्र करनी है कि हम कयामत से पहले अपनी तैयारी कर लें, अपने आप को हम नेक और सालेह लोगों की फहरिस्त में शामिल करें और उन लोगों में बने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका भी हम पर फख्र करे कि ये हमारे उम्मती हैं और ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम उन सालिहीन के नक्श कदम पर अपने आप को बनाने की फिक्र करें। नमाजों का अहतमाम, सुनन और नवाफिल का अहतमाम, इसी तरीके पर अल्लाह ताला के और तमाम अहकाम की अदायगी का हम ऐसा अहतमाम करें कि फिर उन लोगों में हमारा शुमार न हो जिनके बारे में ये अल्लाह फरमाते हैं कि ला युबालिहिमुल्लाहु बाला, अल्लाह को उनकी जर्रा बराबर कोई परवाह नहीं होगी। अल्लाह ऐसी ला, और देखे आज दुनिया में हो रहा है, करोड़ों इंसान जो हैं अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं, कहाँ मर रहे हैं, कहाँ कट रहे हैं, कैसे कैसे हालात उन पर आ रहे हैं। अल्लाह उन हालात के हम पर आने से हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों की, हमारे बच्चों की, हमारे औलाद दर औलाद के अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए इस लाइन से भी कुछ फिक्र और कोशिश करें। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अज़ीम माशाल्लाह। गुज़श्ता हफ्ते तो मैं नहीं था, उससे पहले हफ्ते में कुछ तफसील मजलिस दावत अल-हक़ के तामीर की आप हज़रात को बताई थी। काम अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी से कुछ शुरू हुआ है और करने वालों को भी मुतवज्जे किया है कि अब कम वक्त कम रह गया है और वो फिक्र करें, एहतमाम करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम तेज़ी से अब जारी रहेगा और होता रहेगा। ख़ास तौर पर लश्तर वाले हजरात से गुजारिश है कि वो अपने शहर की, अपने इलाके की एक मस्जिद जहां लोग नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, बच्चे दीन का इल्म हासिल करेंगे और बहुत से दीनी और इस्लाही प्रोग्रामात होते रहेंगे, तो उसके लिए भी इसकी तामीर की फिक्र करें। तकरीबन नवंबर 2014 में, यानी आज से एक साल से ज़्यादा हो गया, एक साल चार महीने 16 महीने पहले हमारे मजलिस के खिदमत करने वाले हाफिज़ मोहम्मद साहब एक एक दुकान पर और एक एक मकान पर कोशिश की थी पहुंचने की। अब फिर दोबारा काम अस्तर नो गया अच्छी तरह शुरू हुआ है। हाफिज़ मोहम्मद साहब भी इंशाल्लाह घर घर जाने की हिम्मत कर रहे हैं। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि जब वो आए आपके पास तो आप इस इदारे का भरपूर तआवुन करें। इसी तरीके पर अगर यहाँ के अहबाब एक एक स्ट्रीट की जिम्मेदारी ले लेते हैं कि भाई हम अपनी स्ट्रीट के जितने भी मुसलमान भाई हैं उनसे मिलकर यहाँ के लिए तरगीब देंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा, सहूलत से तय हो जाएगा। उसके लिए हाफिज साहब से अपना नाम बता दें कि भाई हम फलां स्ट्रीट के लिए अपने तौर पर तैयार हैं, हम पूरी फिक्र करेंगे। अगर महीने भर में, चूंकि अब जो है तकरीबन महीने डेढ़ महीने में जो काम होगा उसका अंदाज़ा भी 1.5 लाख पाउंड का है, इतना काम होने वाला है। जितना भी हिस्सा लग जाए हम हिम्मत करें, इरादे करें, देने वाले अल्लाह है। इंसान सिर्फ बहाना बनता है, फिक्र और मेहनत उसको करनी है, फिर अल्लाह ताला इस फिक्र और मेहनत पर किसी को भी जरिया बना देंगे, आपका थोड़ा हिस्सा होगा, काम किसी और अल्लाह के बंदे से पूरा करा देंगे। ऐसा होता ही है, लेकिन हमें फिक्र करनी है। हम ये कह रहे हैं भाई हम तो नहीं, कोई और से ले लो जाके, तो फिर वो बात नहीं बनी। जो भी दामे दिरमे कदमे सकुने वाले एक जुमला बहुत पुराना चला आ रहा है भाई, जितना भी मुमकिन हो। गुजराती में कहते हैं फूल नहीं तो फूल नहीं पांखरी गई, यानी फूल पूरा ना दो तो फूल के पत्ते तो दे दो कम से कम। इसी से काम बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह देने में इखलास भी होता है और उस काम में कबूलियत भी होती है। हमारे बुजुर्गों ने बड़े बड़े इदारे जरूर कायम किए, लेकिन अवाम के पैसों से काम शुरू किया। एक एक रुपया गरीब का फकीर का लेकर आज इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिल रही, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह लाखों करोड़ों मस्जिदें बन चुकी हैं आमतुल मुस्लिमीन के चंदे से, किसी पर मदार नहीं, किसी पर ये नहीं कि भाई वही मस्जिद बनाएगा, हम ही बनाएंगे इंशाअल्लाह सुम इंशाअल्लाह। तो हिम्मत करें और ज्यादा से ज्यादा अपना हिस्सा उसमें डालने की असर नो कोशिश करें। जुमे में हम आपसे तरगीब देते हैं कि भाई कम से कम 5 पाउंड तो आप ऐसी हिम्मत करें कि भाई मस्जिद के बनने में हमारा हिस्सा लग जाएगा। जब ऐलान होता है तो माशाल्लाह कुछ हो जाता है, नहीं होता भी वो 100 तक पहुंच जाता है। गुज़िश्ता हफ्ते ऐसे ही हुआ, लेकिन उधर भी था, बहुत से हज़रात नहीं थे, लेकिन भाई हिम्मत से काम लें इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत बहुत कबूल फरमाए और आप सब के लिए भी, हम सब के लिए जरिया आखिरत बना दे सुभान अल्लाह।